यकीन कर, ये सितम की रात ढल जाएगी, ये अंधियारा पिघल जाएगा, मंजिल बस आने ही वाली है। किसी देश के एक राजा ने सड़क के एक रास्ते पर बहुत बड़ा पत्थर रख दिया। दिन भर वो राजा चुपके से एक झाड़ के पास से देखने लगा क्या होता है इस पत्थर के साथ, कितने लोग आए, कर्मचारी आए, सभासद आए, मंत्री गए, पर किसी ने उस पत्थर को हाथ तक नहीं लगाया। कईयों ने पत्थर को गाली दी, कईयों ने राजा को गाली दी, प्रशासन को गाली दी, किसी किसी को उस पत्थर से थोड़ी सी चोट भी लगी, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि इस पत्थर को मैं बाजू करूं। हम सब ने सुना है कि फिर लास्ट अंत में एक किसान वहाँ से गुज़र रहा है और जब उसे वो पत्थर दिखता है तो उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है और वो बड़ा सा पत्थर बहुत मुश्किल से वो हटा देता है। और जब पत्थर को हटाता है तो देखता है वहाँ पर सोने के सिक्कों की एक थैली है जिस पे लिखा है कि जो ये पत्थर हटाएगा ये सोने की थैली सिक्कों की उसकी हो जाएगी। अब तक दिन भर कितने गए, सबने दोष लगाया। उठाने का काम, हटाने का काम जिसने किया उसे बख्शीश मिला। ब्राह्मण जीवन में, ब्रह्मा कुमार जीवन में, इस राजयोगी जीवन में ऐसे बहुत से पत्थर आए, बहुत से पत्थर रखे हैं। और जितने पत्थरों को हम बाहर हटा देंगे उतने ही इनाम बख्शिश हमें मिलेंगे। और ये जो मार्ग है, कुमार जीवन का मार्ग, ब्रह्मचर्य का मार्ग है, अखंड ब्रह्मचर्य का मार्ग है, संपूर्ण प्यूरिटी का मार्ग है। कोर्स की किताब में एक चित्र है राजयोग की यात्रा, उसमें 5 विघ्न दिखाए हैं। सबसे पहला क्या है? दीवार। कौन सी दीवार? नोकीली दीवार। किसकी दीवार है ये? कोर्स की किताब में 5 विघ्न दिखाए हैं, राजयोगी जा रहा है, सबसे पहले दीवार है काम, दूसरा आग का गोला है, किसका है वो? क्रोध। तीसरा खजाने रखे हुए है, क्या है वो? लोभ। अगला एक माँ है अपने बच्चे को पकड़े हुए, मोह। और अंतिम अहंकार। आज सुबह की साकार मुरली, कोई कोई बच्चों को मगरूरी हो जाती है कि हमने सब कुछ जान लिया है और फिर मुरली भी मिस करते हैं। कोई कोई मुरलियाँ बहुत अच्छी चलती है, बाप कहते हैं अगर 10-15 ऐसी मुरलियाँ मिस कर दी है तो फिर से बैठकर उन सभी मुरलियों का चिंतन करो। आज सुबह की साकार मुरली। तो राजयोग का ये जो मार्ग है, ब्रह्मा कुमार जीवन का ये जो मार्ग है, इसमें सबसे पहली जो बाधा बताई है जो कि दीवारें चीन चाइना की दीवार से भी अधिक शक्तिशाली, जिसमें कांटे हैं, नुकीले कील लगे हैं और जिसमें आधे से अधिक ब्रह्मा कुमार गिरकर घायल हो जाते हैं। क्या किया जाए? ये द फर्स्ट एंड द लास्ट पेपर कहा जाएगा ब्रह्मा कुमार जीवन, क्योंकि आज तक इस यज्ञ से जितने कुमार इस ज्ञान को छोड़ कर गए हैं, कहीं ना कहीं काम की ही चोट लगी है, कहीं ना कहीं शरीर ने ही आकर्षित किया है। क्या किया जाए जिससे आत्मा काम चीत बन जाए? अध्ययन करना होगा। आपको कुछ किताब के नाम हम बता रहे हैं, उसको नोट करना है। जिन्होंने डायरी बाजू रखी थी वो ले ले, और हर दिन ब्रह्मचर्य के विषय में एक पेज जरूर पढ़ना है। सबसे पहली किताब यज्ञ की जगदीश भाई की लिखी हुई ब्रह्मचर्य सेलिबसी, सबसे पहली किताब ब्रह्मचर्य पर लिखी हुई जगदीश भाई की। दूसरी किताब है स्पार्क की, पवित्रता और ब्रह्मचर्य, स्पार्क की किताब, मोटी किताब है, जिसको सॉफ्ट कॉपी भी चाहिए वो ले सकता है। तीसरी किताब द प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य बाय स्वामी शिवानंद डिवाइन लाइफ सोसाइटी, इंग्लिश ऑनलाइन पूरी अवेलेबल है। चौथी किताब ब्रह्मचर्य स्वामी शिवानंद, ये दूसरे स्वामी शिवानंद है, महाराष्ट्र वरुड़। तीसरी किताब ब्रह्मचर्य एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस, एस्कॉन की किताब है। ये सभी किताबें ब्रह्मचर्य की है। एक और ब्रह्मचर्य की किताब है यूपी के किसी संत की। ये सभी किताबों का पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है हिंदी में, कुछ कुछ का इंग्लिश में भी है। वो सारी पीडीएफ डाउनलोड करें, प्रिंट आउट निकालो और डेली एक पेज ब्रह्मचर्य विषय में डेली पढ़ना है। ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य की परिभाषा क्या है, ब्रह्मचर्य का इस जीवन में क्या महत्व है, कैसे यह कुमार जीवन अखंड रहे, ये सब जानना बहुत आवश्यक है। तो शुरुआत यज्ञ की किताब से करना है, हर दिन एक पेज। और केवल पढ़ना नहीं है, क्या करना है, उस पर चिंतन करना है, मनन करना है। स्वामी विवेकानंद से पूछा गया था, प्लीज टेल अस हाउ इज इट दैट यू स्पोक एंड इट हैड सच अ स्टुपेंडस इफेक्ट ऑन द ऑडियंस। आपने बोला और उसका सभा पर इतना शक्तिशाली परिणाम कैसे हुआ? उन्होंने कहा उत्तर में, दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ जस्ट वन थिंग, आई हैव नॉट अलाउड माई माइंड टू हैव अ सिंगल सेक्सुअल थॉट इन माई लाइफ टाइम। जितने भी महान कार्य संसार में हुए हैं पुरुषों के द्वारा, वो 40 वर्ष की उम्र के बाद उन्होंने किए हैं अधिकतर। क्यों? क्योंकि 40वें वर्ष तक विकारी वासनाओं में डूबे हुए थे। एट द एज ऑफ 40 एंड अबव फिर बुद्धि काम वासना से थोड़ी बाहर निकली और फिर क्रिएटिव वर्क करने लगे अधिकतर। कुछ कुछ अपवाद है जिन्होंने बचपन से ही ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया, क्योंकि ब्रह्मचर्य की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा इतनी सूक्ष्म है कि जो बहुत छोटी उम्र में उस ऊर्जा को पकड़ लेते हैं उनके द्वारा इस संसार में बहुत बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। क्योंकि जो ब्रह्मचर्य है केवल वही एकाग्र है, क्योंकि काम जितना मन को उत्तेजित करता है और शरीर को उत्तेजित करता है दूसरा और कोई नहीं करता, बुद्धि को भ्रमित कर देता है, भ्रष्ट कर देता है, एकाग्रता भंग हो जाती है। कॉलेज का एक कुमार पढ़ाई में कितना तेज है, एकाग्र है। सब लोग कहते हैं तुम बहुत बुद्धिमान हो, वो कहता है बुद्धिमान नहीं हूं, मेरी एक ही बात है फोकस। गांव से आया हुआ है, गांव में माँ रहती है, बेचारी गरीब है, बहुत पाल पोस कर बड़ा किया है, अभी शहर में कॉलेज में भेजा है, इकलौती संतान है, बाप नहीं है, पढ़ाई कर रहा है और बहुत फोकस है, बाकी किसी चीज़ों में उसको इंटरेस्ट नहीं है, ना सिनेमा जाता है, ना कभी पार्टी में जाता है, ना बाहर दूसरे स्टूडेंट्स के जैसे टाइम वेस्ट करता है, ना कैंटीन में जाता है, बस अपनी पढ़ाई, अपना कमरा और फोकस है। लोग उसे चिढ़ाते हैं किताबी कीड़ा, और एक दिन यही युवक उसी कॉलेज की एक लड़की के संपर्क में आता है और दोनों का प्यार होता है। और वो बहुत अमीर खानदान से है, ये बहुत गरीब है। और जैसे जैसे आकर्षण बढ़ता है, इसकी पढ़ाई छूटने लगती है। अब तक इतना फोकस था, पर अब सारे विचार उस व्यक्ति के हैं। और जिसके पिताजी तो चाहते ही नहीं कि इसके साथ शादी हो, और एक संघर्ष और पढ़ाई छूट गई। और ये आकर्षण बहुत क्षणिक आकर्षण है, पर हर व्यक्ति जो किसी दूसरी स्त्री की ओर आकर्षित होता है सोचता है ये मुझे पहली बार हो रहा है। ऐसा आकर्षण चाहे किसी को भी ना हुआ हो, उसे लगता है ये प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है। सारी किताबें, सारे गीत, सारी सिनेमा मूवीज इसी से भरे हैं। परंतु इसका इन सब से कोई संबंध नहीं है, केवल शरीर की उत्तेजनाएं हैं बस, और क्षणिक है, इम्पल्सेस एंड अर्जेस। यदि उनको अब न रोका जाए तो वो नहीं रुकती। इसके लिए गिल्ट कॉन्शियसनेस में न आते हुए इस शरीर की केमिस्ट्री को भी समझना है, इस आकर्षण को भी समझना है और अपने आप को इससे मुक्त करना है। यदि श्रेष्ठ विचार ना हो तो ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, अगर श्रेष्ठ विचार हो तो ऊर्जा अपने आप ऊपर बहती है। और जब मन ऊपर है तो शरीर अपने आप शांत है, जब मन नीचे है तो शरीर भी नीचे है, और शरीर की ऊर्जा नीचे बहती है। ऊर्ध्वरेता योगी अर्थात जिसने अपने इंद्रियों का संयम किया है। इसलिए कहा यह नोकीली दीवार है। 40-40 साल ज्ञान में चलने वाले भी एक दिन थक और हार कर जाकर शादी करते हैं। क्यों? शायद वो इच्छा दबी हुई थी। इसलिए दमन नहीं करना है, समझना है। किसी को कहा जाए वहां देखना ही नहीं है, बार बार ध्यान उधर जाता है। काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, बार बार इच्छा है, क्या है ये? जितना ज्यादा सुनते हैं उतना आकर्षण बढ़ता है, कितना विरोधाभासी है, इट्स अ पैराडॉक्सिकल। बट माइंड इसी तरह काम करता है, उसे जो कहो कि ये नहीं करना है उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होता है। इसके लिए ये समझना, मन छोटा सा बच्चा है और उसे समझाना है पवित्रता क्या है, इच्छा क्या है, तृष्णा क्या है, इंद्रिय क्या है, ये शरीर क्या है, इसकी केमिस्ट्री क्या है, इस शरीर को भी समझना है। तो 5 विघ्न है। सबसे पहला विघ्न है नुकीली दीवार, और इसको जीतने के लिए 6 बातें करनी है। पहले दूसरा विघ्न भी देख लेते हैं, क्रोध। जहां काम है या कामना है और वो पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध आएगा, आग की तरह है, जलाता है, व्यक्ति होश खो बैठता है, पागलपन की अवस्था है क्रोध, क्षणिक पागलपन। अभी अभी क्रोध करके आया हुआ व्यक्ति अपने घर आता है और अगर उसको कहा जाए कि जो तुमने क्रोध किया वो दृश्य देखो, स्क्रीन पर दिखाया जाए, तो वो कहेगा शायद ये मैं हुई नहीं। इट्स अ स्टेट ऑफ इंसेनिटी, मैडनेस, क्षणिक पागलपन है। क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध कर रहा है तब वो होश में नहीं है, बेहोश है। तीसरा है लोभ, धन, और कमाऊं और कमाऊं और पैसे और पैसे। पैसा ऐसी चीज है कि जितना मिल जाए उतना कम लगने लगता है, और आध्यात्मिक जीवन अर्थात जितना कम चीजें है उतना वो अच्छा है। हम एक आश्रम गए थे एक जगह भट्टी कराने मलेशिया, वहां पर भट्टी के लिए जो रिट्रीट सेंटर था एक दूसरी संस्था है आध्यात्मिक उसका था। सब भाई बहने वहां गए थे, किराए से लिया गया था, उसमें ढेर सारे कमरे थे, आश्रम था एक। वहां के जो कमरे थे उसको कहते हैं मिनिमलिस्टिक वे ऑफ लिविंग। उस कमरों में एक बेड था, बिस्तर, बस और कुछ भी नहीं था। कम से कम चीजें कमरे में, एज लेस एज पॉसिबल। खिड़की, उसमें एक पर्दा, बस बाकी कुछ नहीं था, ना कोई टेबल ना कोई कुर्सी, कम से कम चीजें। अधिक से अधिक चीजें जितनी सजाओ उतनी वो बंधन बन जाती है। लोभ, पैसा भी ऐसा ही है। अभी जितना पैसा है, यदि हम अपने आप से पूछे क्या ये पर्याप्त है, क्या मैं इससे संतुष्ट हूं, अंदर से आवाज आएगी नहीं, और बहुत कमाना है। क्यों? बाबा की सेवा करनी है। बाबा को तुम्हारा पैसा नहीं, तुम चाहिए। 4 घंटा ट्रैवल, 8 घंटा ड्यूटी, ना योग हो रहा है, ना अमृत वेला हो रहा है ढंग से, ना तो मुरली क्लास जा पा रहे हैं ढंग से, ना नुमा शाम का योग हो रहा है, ना ज्ञान का चिंतन हो रहा है, सारा समय पैसे कमाने में लगा हुआ है। ये सोचकर कि ये पैसे बाबा की सेवा में लगाएंगे और वो दिन कभी नहीं आता है। पैसा आवश्यकता, पैसे की आवश्यकता सभी को है और जरूरी भी है, परंतु वो जीवन का एकमात्र लक्ष्य न बन जाए। अगला है अटैचमेंट, मोह। एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है क्या एक सन्यासी ईमेल कर सकता है? गुरु कहते हैं हाँ, सो लॉन्ग एज देयर आर नो अटैचमेंट्स। जब तक कोई अटैचमेंट ना, मेल में अटैच करते हैं ना, हर चीज करो पर किसी से भी अटैच नहीं होना है। और हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम अटैच हो जाते हैं। अगर 10 दिन तक ये तकिया ली तो 11वें दिन यही तकिया चाहिए, इससे अटैचमेंट हो गया। बहती नदी सा, लोग आ रहे लोग जा रहे, आए तो ठीक जाए तो भी ठीक, किसी को भी पकड़ के नहीं बैठना है, ये इसको पकड़ू, ये मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है और ना मैं किसी का हूं। अंदर ही अंदर स्वयं को डिटैच रखना है, डिटैच्ड। लास्ट है अहंकार। हमेशा ये समझना अभी तक मैंने कुछ भी नहीं समझा है, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। जो समझा है वो केवल सूचनाएं हैं, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये परम धाम है, ये याद की यात्रा है, ये सेवाएं हैं, ये सूक्ष्म वतन है, ये योग की ड्रिल है, ये मुरलियां है, बहुत सूचनाएं एकत्र की है। ज्ञान अर्थात प्रकाश, ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात धारणा, ज्ञान अर्थात प्रैक्टिकल जीवन। सूचनाओं को ज्ञान नहीं समझना है। ये सतयुग आने वाला है, विनाश सामने खड़ा है, बहुत सूचनाएं हैं, ये संगम युग है। अपने आप को ज्ञान से भरना है और ज्ञान कहता है अब तक जो कुछ जाना कुछ भी नहीं जाना, अब चालू करना है, अब समझना है क्या है ज्ञान। तो 6 चीजें इन पांचों विकारों को जीतने के लिए, या फिर जो पहला विकार है उसको जीत लो तो बाकी सब अपने आप वश में आ जाएंगे। तो काम जीत कैसे बने? सबसे पहली आधार, पहला आधार है भोजन। फर्स्ट भोजन, योगी का भोजन कैसे होना चाहिए? सात्विक से काम नहीं चलेगा, सुपर सात्विक, जिसमें बहुत तीखा है, तेल मिर्च है और मसाले हैं, वो योगियों का भोजन नहीं है। सभी उत्तेजना उत्पन्न करने वाले हैं। तीन बातें याद रखनी है भोजन की। सबसे पहला, उत्तेजना उत्पन्न करने वाला ना हो। दूसरा, आलस और प्रमाद लाने वाला ना हो। खाया उसके बाद में बस सोने की इच्छा है। और तीसरा, स्वास्थ्यवर्धक हो। और भी कुछ बातें हैं, जैसी चौथी, ओवर ईटिंग ना हो। योगी का भोजन हो सके उतना कम हो, क्योंकि हमारी ऊर्जा कुछ और कार्य के लिए है। भोजन को पचाने में ही आधी ऊर्जा जा रही है। इतना व्यक्ति खाता है कि उसको पचाने में उसकी ऊर्जा जा रही है। इसके लिए कहते हैं जब उपवास किया जाता है तो ऊर्जा आ जाती है, शक्ति भर जाती है आत्मा में। हो सके तो 24 घंटे में 12 से 14 घंटा उपवास होना चाहिए। 12 टू 14 आवर्स फास्ट, अर्थात अगर रात को 8 बजे खा लिया उसके बाद में फिर कुछ मत खाना, फिर सीधा अगले दिन 8 बजे के बाद। दिस बॉडी नीड्स रेस्ट। और रात भर हम सो रहे हैं, ऐसा क्या सुबह काम कर लिया रात भर कि उठते ही इतना सारा नाश्ता कर रहे? कुछ भी नहीं किया है, रेस्ट में था। आदत। और योगी का जो पहला आहार है जो शरीर में जाए, वो आहार बहुत हल्का होना चाहिए। और सबसे हल्की चीज इस संसार में है पत्तियां, हरी पत्तियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और उसको जूस बना देना। दैट इज द फर्स्ट थिंग टू एंटर द बॉडी। वो भी 12 से 14 घंटे बाद। कोई कोई लोग 16 घंटे फास्ट करते हैं, और जो लोग 12 से 14 या 16 घंटे करते हैं, दे रिमेन वेरी हेल्दी थ्रू आउट द लाइफ। और जो दिन भर खाते ही रहते हैं, ना तो ब्रह्मचर्य हो पाता है, और आधी से ज्यादा ऊर्जा किस में जाती है? भोजन को पचाने में। ब्रह्मचर्य अर्थात कंट्रोल ऑफ पैलेट, जीभ को जिसने वश में किया है, रस, रसेंद्रिय और जनेंद्रिय, द ऑर्गन ऑफ टेस्ट एंड द ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन इंटरकनेक्टेड है। इधर उत्तेजना तो उधर उत्तेजना। फर्स्ट भोजन, उसमें बताया ओवर ईटिंग, उसके बाद है हंगर लेस ईटिंग, भूख नहीं है फिर भी खाना। नियम निभाने के लिए इज नॉट अलाउड। इस संसार में मनुष्य ही एक प्राणी है जो भूख नहीं रहती तो भी खाते रहते। शेर कभी नहीं खाता है। उसके बाद है ईटिंग इन हंगर, इन एंगर, क्रोध में है, अप्रसन्नता से खाना, धन्यवाद न करके खाना। उसके बाद है रॉन्ग टाइप ऑफ फूड। जितना हो सके 50% भोजन शुड बी रॉ, 50% कुक्ड, जैसे ही आग में डालो भोजन को, कोई भी चीज को, आग क्या करती है? एक झोपड़ी को आग लग जाए तो आग क्या करती है? ज्यादा करती है या कम करती है? वस्तु को कम कर देती है, भस्म कर देती है, नष्ट कर देती है। सतयुग में देवी देवता क्या खाते थे? मुरलियां है इसके ऊपर, बहाना चीनी है, बहाना तेल है। वो संस्कार यहां डालने हैं। संसार में, प्रकृति में इतनी सारी चीजें, उसमें सब कुछ है जिससे शरीर स्वस्थ रहे। जो मनुष्य ने बनाया है अप्राकृतिक, प्रोसेस्ड, कैंड, वो जितना मनुष्य ने अंदर डाला उतनी बीमारियां बढ़ी, उतनी दवाइयां बढ़ी, पर स्वस्थ तो है ही नहीं कोई। फास्ट फूड, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, इनमें से किसी की भी शरीर को आवश्यकता नहीं है। दिस बॉडी नीड्स दैट विच इज अवेलेबल इन नेचुरल फॉर्म। ब्रह्मचर्य का साधक अर्थात प्राकृतिक आहार। इसके लिए हाफ डे रॉ, हाफ डे स्टीम्ड, बॉइल्ड और कुक्ड, यहां से शुरुआत करनी है। रॉ अर्थात वेजिटेबल्स, जूसेस, फल, फूल, गाजर, टमाटर, ककड़ी, लौकी, नींबू, पालक, करेला, तुलसी, पुदीना, ग्रीन, बी ग्रीन, गो फॉर ग्रीन। इस संसार में जो कुछ हरा है, जैसे जैसा वो शरीर में जाएगा सारी बीमारियां दूर होगी, और ब्रह्मचर्य परिणाम होगा, पुरुषार्थ नहीं। अभी पुरुषार्थ है बिकॉज ऑफ रॉन्ग टाइप ऑफ डाइट। महात्मा गांधी ने लिखा है अपनी एक आर्टिकल में, डाइट कंट्रोल ऑफ द पैलेट इज द फर्स्ट असेंशियल इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ द वाउ। I saw that complete control of the palate makes the observance very easy, and so I now pursued my dietic experiments not merely from the vegetarian's but from the brahmachari's point of view. I saw the result of this experiment that, ye mahavakya hai, the brahmachari's food should be limited. Brahmachari ka bhojan kaisa ho? Limited, simple, spiceless and if possible uncooked. 6 years of experiment have showed me that brahmachari's ideal food is fresh fruits and nuts. Sabse pehla kaam bhojan, salt, oil, spices. Brahmacharya bheya ja raha hai isme. चिली, ऐसी आवाज आती है तब अच्छा लगता है। पेट भर कर निरंतर ऐसा अनुभव कि पेट खाली है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन प्यूरिटी। दूसरा संबंध, सेकेंड स्टेप संबंध। जितने संबंध है, संपर्क है, सबको क्या कर देना है? डिटैच्ड, काम से काम, सबके साथ मिलकर काम करना है। इधर बहने हैं, इधर भाई है, काम पूरा हुआ, बाय बाय, नो अटैचमेंट्स, नो फोन कॉल्स, नो मैसेजेस, नो अननेसेसरी व्हाट्सएप, नो नीड, मिनिमल कन्वर्सेशन, as less as possible. काम है, बात किया, पूरा हुआ, फोन बंद. डोंट इट. टू मच कॉन्टेक्ट, टू मच फैमिलियरिटी लीड्स टू फॉल. जितना हो सके सारे संबंध डिटैच करते जाने. प्रेम बहुत हो, सम्मान हो, आदर हो, सहयोग हो, परंतु अंदर से वृत्ति अनासक्त. दैट इज द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्मचर्य. तीसरा, एडिक्शन फ्री. अपने आप को एडिक्शन से फ्री करना है. और सबसे बड़ा एडिक्शन वर्तमान में युवकों में स्वयं स्वयं को उत्तेजित करना. दैट इज द ग्रेटेस्ट एडिक्शन. जब तक इससे मुक्त नहीं होते, सेंशुअल एंड सेक्सुअल फैंटेसीज, तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता. इसके लिए विजुअलाइजेशन पर काम करना है. क्रिएटिव विजुअलाइजेशन. क्योंकि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे तो मन सेंशुअल विजुअलाइजेशन करता है. आज की मुरली है साकार, लास्ट लाइन, ये ज्ञान बड़ा डिफरेंट है. इट्स अ डिफरेंट स्पिरिचुअल नॉलेज. हमने जो कहा, किताबें पढ़ते पढ़ते किताबों को इमेजिन करना है. किताब में लिखा है ब्रह्मचर्य यही जीवन है, वीर्य नाश मृत्यु. बस यहीं रुक जाओ और चिंतन करो ये क्या कहा. तो तीसरा, पहला बताया भोजन, दूसरा बताया संबंध, तीसरा एडिक्शंस. अपने आप की चेकिंग करनी है कि मुझे कौन कौन से एडिक्शंस. अगला है सत्संग. कुमारों को कुमारों के ही संग में रहना है जितना हो सके. एक संगठन हो, बीच बीच में मिलना है, हो सके तो एवरी संडे. दो लोगों की आवश्यकता है संगठन के लिए. ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा, किसी एक स्थान पर मिलकर ज्ञान की चर्चा करनी है. या जो समस्याएं आ रही है प्यूरिटी के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में, और कोई उसके बारे में आपस में लेन देन करनी है. होली कंपनी. उसके बाद है पांचवा, मुरली चिंतन. जब तक ज्ञान नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता. आज की मुरली में है केवल बाप को याद करने से कुछ नहीं होगा, नॉलेज भी चाहिए. अरे जिसको याद कर रहे हो वो क्या बोलता है वो भी तो सुनो. तो अपने ज्ञान चिंतन को बढ़ाना है, अध्ययन. उसके लिए और एक काम दे रहे हैं. जो लोग घर पे रहते हैं, कमरों में रहते हैं, एक अलमारी बनानी है डेडिकेटेड बीके लिटरेचर. उसमें सिलेक्टेड बुक्स रखनी है, एक टेबल, एक चेयर. डेली स्पेंड हाफ आवर स्टडी. स्वाध्याय. बैठना है, स्टडी करना है एवरी डे. और उस चेयर पर बैठकर और कुछ भी दूसरा काम नहीं करना. डेडिकेटेड फॉर स्पिरिचुअल स्टडी. ताकि वहां बैठते ही माइंड को ऐसा ट्रेनिंग दो कि अपने आप बैठते ही बस वहां बैठे और ज्ञान चिंतन चालू. एक लाइन पढ़ना है, रुकना है. डोंट स्टडी. एक ही पैराग्राफ, दैट्स इट. वन लाइन, स्टॉप, विजुअलाइज, थिंक, चर्न, रीथिंक, रिफ्लेक्ट. मनन करना, चिंतन करना, अध्ययन करना. नेक्स्ट लाइन, ब्रह्मचर्य इज द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड. स्टॉप, थिंक, क्यू, चिंतन. लास्ट सिक्स्थ, ऑटो सजेशंस. ऑटो सजेशंस अर्थात आत्म सुझाव, अपने आप को हम क्या बातें कर रहे हैं अपने आप से, अपने आप को समझाना है। ना उदास हो मेरे हम सफर, हे मन उदास नहीं हो जाना, ये मार्ग बहुत कठिन है। 40 के ऊपर तक पहुंचने वाले कुमारों की संख्या बहुत कम है, उसके पहले ही निकल जाते हैं। आकर्षण टेम्पटेशन इतने ज्यादा है, एक्सपेरिमेंट करना चाहता है मन। तो ऐसी 6 बातें याद रखनी है। ब्रह्मा, बी फॉर भोजन, आर फॉर रिलेशनशिप्स, ए फॉर एडिक्शन फ्री, इंटरनेट एडिक्शन, यूट्यूब एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन। एक लाइन अपनी डायरी पर नोट करके रखना है, डू नॉट गो ऑनलाइन विदाउट पर्पस, डू नॉट गो ऑनलाइन विदाउट पर्पस। कोई लक्ष्य है, ढूंढा, वापस आ गए, ढूंढते नहीं बैठते जाना है, घंटों बीत जाएंगे। बी भोजन, आर रिलेशंस, ए एडिक्शन फ्री, एच होली कंपनी अर्थात सत्संग, अर्थात महान आत्माओं का संग, श्रेष्ठ आत्माओं का संग, अर्थात ऐसी क्लासेस सुनना है पुरानी यज्ञ की, दादियों की, दादियों के इतिहास की, कि जो फिर से आत्मा में बल भर दे, शक्ति भर दे। और केवल सुनना नहीं है, क्लास सुन लिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, सुपर, फॉरवर्ड, और भूल गए। एक बार सुनना, दूसरी बार सुनना, नोट्स निकालना, अब क्लास को बाजू रखना, नोट्स को पढ़ना और फिर उसका दोबारा चिंतन करना। एक क्लास एक पूरा दिन चलनी चाहिए। ट्रैवलिंग कर रहे हैं, क्लास ऑन कर दो, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। एम मुरली चिंतन, और लास्ट बताया ए ब्रह्मा। ऐसी 6 पॉइंट्स है, ए अर्थात ऑटो सजेशंस, आत्म सुझाव, स्वमान, अपने आप से बातें करना, हे मेरे मन तू क्या कर रहा है, आत्म सुझाव, मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे लिए संभव है, बहुत सहज है, ये मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने आप से बातें करना, अपने आप को सजेस्ट करना, हे मन तू गिरा है ना, उदास हो, अब फिर से उठ, फिर से प्रयत्न कर, भगवान साथ है। और जब मन वासना से भर जाए, अचानक स्थान को छोड़ दो, गो टू गार्डन, गो ऑन द टेरेस, चीजों को हटा दो, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, गो ऑफलाइन। तो राजयोग के पथ में ये 5 बाधाएं हैं, और उसकी सबसे बड़ी बाधा कुमार जीवन की जो है वो ये नोकीली दीवार है, जिसमें जाते हैं और गिरते हैं और घायल हो जाते हैं। और जहां कामनाएं हैं वहां क्रोध तो आएगा ही, आग है जलाएगा, और जहां कामनाएं पूर्ण नहीं होती है फिर और चाहिए, लोभ, और पैसा और पैसा और पैसा, पैसों के पीछे पागल है। और ज्ञान योग छूट गया है, और फिर आसक्तियां। इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली वो है जिसका किसी भी देहधारी में आसक्ति नहीं है, जिसकी ट्रेन में बैठे हुए हैं, हम बैठे हैं, कोई दूसरा आया ट्रेन में, थोड़ी देर तक उसके साथ बातें की, अब मोह हो गया, आसक्ति हो गई, अब जब उसका स्टेशन आ गया, जाने की बारी आ गई, तब अब दर्द हो रहा है, या हमारे उतरने की बारी आ रही तो दर्द होता है। संगम युग एक ट्रेन है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, बहनें आ रही है, भाई आ रहे हैं, कुछ दिन रहेंगे, चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, कोई मर जाएगा, कोई उतर जाएगा, कोई बीमार पड़ जाएगा, कोई ज्ञान ही छोड़ के चला जाएगा, तो क्या हम रोते बैठे? हर एक का पार्ट है, कोई आएगा जाएगा, आना और जाना, हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है, जिसको जो करना है करते रहे। कोई गालियां देगा, कोई आरोप लगाएगा, कोई दोष रखेगा, अब्यूज करेगा, जिसको जो करना है करे, हमारा लक्ष्य है संपूर्णता, संपूर्ण ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्रता, कर्मातीत तक हमें पहुंचना है, आगे आगे बढ़ते जाना है। ये सारी आसक्ति या मोह बंधन फंसाते हैं आत्मा को, दुखी कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो जाता है। और इस ज्ञान के लिए बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की आवश्यकता है, फोकस। और लास्ट बताया अहंकार, चोटी है, उस चोटी से गिरा था। कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, कितने भी साल ज्ञान में हम चले, परंतु एक छोटे से बच्चे जैसा एटीट्यूड हो कि मुझे सीखना है और बहुत कुछ बातें बाकी है, मुझे हर एक से सीखना है, क्योंकि हर व्यक्ति मुझे सिखाता है कुछ ना कुछ, हर परिस्थिति मुझे कुछ ना कुछ सिखाती है, हर माया, हर विघ्न, हर प्रलोभन, हर आकर्षण ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। तो फिर से अलर्ट होके बैठेंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे बाबा के सामने, और जब से ब्रह्मा कुमार बने उस दिन से आज दिन तक, यदि हमसे कोई भूल हुई है और काम से रिलेटेड भूल हुई है, वो सारे दृश्य बाबा के आगे समर्पित करना है। और आज से, इस भट्टी से, 9 तारीख नवंबर मास 2019, संपूर्ण अखंड ब्रह्मचर्य का शक्तिशाली संकल्प करेंगे। ओम शांति।
ये सफर बहुत है कठिन, मगर न उदास हो मेरे हम सफर, कभी ढूंढ लेगा ये कारवा वो नई जमीन नया आसमां, जिसे ढूंढती है तेरी नजर, जिसे ढूंढती है तेरी नजर, नवदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन, मगर नवदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन, मगर नवदास हो मेरे हम सफर। नवदास हो मेरे हम सफर।